ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ से। नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब, भगवद गीता। ओके, भगवद गीता हम कहां तक पहुंचे, कौन बताना चाहेगा? हाँ, छठे अध्याय का क्या नाम है? ऑप्शन देता हूं मैं, ठीक है? ऑप्शन ए डांस योगा, ऑप्शन बी ध्यान योगा। हाँ, ध्यान योगा। ओके, ठीक है। तो हम श्लोक संख्या 17 आज के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, और हो सके तो आगे कुछ और श्लोकों पे भी करेंगे हम। तो छठा अध्याय है ध्यान योग और है 17वां श्लोक, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। सत्रहवां हो चुका है। ओके, अगला वाला करते हैं हम 18, और क्या काम करते हैं मेरे पीछे बोलिए। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एवावशिष्टते निष्प्रह सर्वा कामेभ्यो युक्ता इति उच्यते तदा यदा विनियतं चित्तं आत्मन्येव तिष्ठते निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्य उच्यते तदा यदा विनियतं चित्तं आत्मन्येव अवशिष्यते निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्य उच्यते तदा यदा विनियतं चित्तं आत्मन्येवावशिष्यते निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्य उच्यते तदा। को पढ़ना चाहे शब्दात पढ़ेंगे हम। यदा जब विनियतम विशेष रूप से अनुशासित चित्तम मन तथा उसे कार्य आत्मनि आध्यात्म में एवं निश्चय ही अवतिष्ठते स्थित हो जाता है निष्प्रह आकांक्षा रहित सर्व सभी प्रकार की कामेभ्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति से युक्त योग में स्थित इति इस प्रकार उच्यते कहलाता है तदा उस समय। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जाए। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। मेरे पीछे बोलिए। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तात्पर्य। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों की यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है। जिसमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद के 4वें अध्याय के 18वें से 20वें श्लोक में कहा गया है, सवयमना कृष्ण पदारविंदियो। ये सारा श्लोक राजा अम्बरीश ने सर्व प्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थित कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों से भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर का अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, और घ्राणेन्द्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध लेने, ये मतलब सूंघने की नाक की शक्ति है घ्राणेन्द्रिय, जीव को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पात्रों का स्वाद देने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। निर्विशेषवादी के लिए ये दिव्य अवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावी व्यक्ति के लिए ये अत्यंत सुगम एवं व्यावहारिक है, जैसे कि महाराज अम्बरीश की उपवर्णित जीवनचर्या में स्पष्ट हो जाता है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों को मन को स्थिर नहीं किया कर दिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ ना कुछ कार्य करना कार्य चाहिए, कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए विशेषकर जो लोग सन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन के दिव्य कार्य की दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवद गीता में युक्त कहा गया है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो मिष्टपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी तिनाविने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो मिष्टपादाय हरे कृष्णा। तो यहां पर जो है ध्यान योग की चर्चा हो रही है, और ध्यान योग में कई तरह की ना विधि विधानों की चर्चा होती है, क्योंकि ध्यान योग जो है अगर देखा जाए तो एक ऐसा योग है जिसमें कि सफलता आपके प्रयास के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, उसके लिए बहुत बहुत यत्न करने पड़ते हैं। तो इसलिए जो ध्यान योग है उसमें बहुत सारे डूज एंड डोंट्स रहते हैं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है उसमें सफलता व्यक्ति की अपने अपने क्षमता के ऊपर बहुत निर्भर करती है। तो इसलिए जो है हम लोग देखते हैं कि ये जो सारे डूज एंड डोंट्स दिए गए हैं, तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ये सारे जो डूज एंड डोंट्स हैं इसको हम भक्ति योग में अप्लाई कर सकते हैं और हमको करने भी चाहिए, क्योंकि वास्तव में जैसे कि बताया जाता है कि जैसे पिछले श्लोक में है कि जो है व्यक्ति को सोने खाने पीने और जो मनोरंजन के कार्य हैं तो उसमें जो है व्यक्ति को रेगुलेटेड होना चाहिए। तो होता है क्या, वास्तव में ये जो बाही जो हम कार्य करते हैं इसका फर्क हमारे मन पे पड़ता है, और जैसे जैसे मन जो है रेगुलेट होता है तो उससे क्या होता है, वास्तव में हमारी इंद्रियां और रेगुलेट होती थी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमारे बाहरी वातावरण का हमारे अंदर के वातावरण पे प्रभाव पड़ता है, और फिर हमारे अंदर के वातावरण का हमारे बाहर के वातावरण या दृष्टिकोण पे फर्क पड़ता है। समझ रहे इस बात को? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डिवोटी जो है चैंटिंग करते हैं, अब चैंटिंग कर रहा है वो, संघर्ष कर रहा है वो, ठीक है, तो उसका संघर्ष है बाहर देख रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अब इस एक्टिविटी से, इस क्रिया से उसका जो मन है वो प्रभावित होता है, ठीक है, अब उसका मन प्रभावित हुआ, लेकिन अब इस प्रभावित हुए मन से उसकी चेतना उस पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसका दृष्टिकोण पे जो है फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति जो है, आप एक ऑर्डिनरी कर्मी व्यक्ति को देखिए जो कि बाहर ड्राइविंग करता है, जो कि चैंटिंग नहीं करता, और जो है ट्रैफिक जैम है, तो क्या होता है, इरिटेटेड हो रहा होता है वो, है हॉर्न पे मारेगा, अपने स्टेयरिंग पे मारेगा, है कभी रेस देगा बिना गियर के, गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो कहता है, अरे यार ट्रैफिक जाम बहुत बढ़िया, कितना लगा जा रहा भाई, या फिर ये लेक्चर सुनेंगे, लगा हुए लेक्चर बहुत बढ़िया, बारिश हो रही है, आप ब्लॉक हो गया, जाम हो गया सारा, ठीक है, अब वो धीरे धीरे बस रेस देते रहेंगे, कीर्तन चल रहा है, पांच प्रभु, और फिर क्या साधना चार्ट में दिखा रहे, प्रभु पांच घंटे उस दिन मेरी हियरिंग हुई है, कैसे ट्रैफिक जाम था। तो क्या है, बाहर की जो एक्टिविटी जो हम जो करते हैं उसका हमारी चेतना पर प्रभाव पड़ता है, और फिर चेतना का हमारा दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम वास्तव में दृष्टिकोण की है। दृष्टिकोण वास्तव में क्या होता है, दृष्टिकोण वही है जैसे कि हमारे मन में जो संस्कार है वो हमें दिखाते हैं, जो हमारे हृदय में संस्कार है वो ही हमको ये दुनिया दिखाते हैं। एक्चुअली जैसे हमारे संस्कार, अगर से कलर से बता रहा हूं, कलर जैसे कि से नीले कलर के आपके संस्कार है, तो क्या हुआ, नीले कलर का आपने यानी चश्मा पहन लिया, अब क्या आपको सारी दुनिया नीली नजर आएगी, है ना। अगर आपने लाल रंग का चश्मा पहना, फिर क्या, सारी दुनिया लाल नजर आएगी। तो इसलिए वास्तव में इससे क्या होता है, हमारी चेतना पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। वैसे चैंटिंग हरे कृष्णा, भगवान का नाम का जो कीर्तन, उसका जप करना सबसे ऊपर है, लेकिन उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमको जो है इन डूज एंड डोंट्स का जो है ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि दिल्ली, अगर एक प्रैक्टिकल बात बोलूं, जैसे कि दिल्ली की जो आबो हवा ऐसी है कि यहां प्यास कम लगती है, हाँ देखा, किसी व्यक्ति से पूछे आप कि आप कितना पानी पीते हैं, एक लीटर दो लीटर, कुछ तो पानी पीते नहीं, जो दाल में मिल जाता पानी वही है। तो उसका फर्क क्या पड़ता है, वास्तव में उसका फर्क यह पड़ता है कि हमारी बॉडी में जो हीट है, जो गर्मी है, ठीक है, उससे क्या होता है, लीवर हमारा गर्म होता है। जब लीवर जो आपका गर्म होता है, अब लीवर गर्मी तो कहीं फेंकेगा ना, यूरिन से तो फेंक नहीं सकता क्योंकि पानी है ही नहीं, तो करेगा कैसे, है ना, जिससे जो है वो लिक्विड से तो नहीं निकाल पा रहा, तो गर्मी कहां फेंकेगा, वो हृदय के पास, क्योंकि उसके सबसे बाद जो है ये हृदय है, तो हृदय के पास भेजता है, तो हृदय गर्म हुआ लीवर से, तो क्या हुआ, अब यहां अगर हृदय गर्म होते क्या कर रहा है, पूरे शरीर में पंप कर रहा है खून को, तो कैसा खून जा रहा है, अभी गर्म खून जा रहा है, अभी जो गर्म खून जाता है, ऐसे क्या होता है, जब खून आपका बहुत गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति बॉडी का सिस्टम होता है कि भाई बहुत ज्यादा अगर इंजन चल गया है तो जरा भाई गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोक दो, भाई इंजन गर्म हो गया है, है ना। उसी तरह से क्या है, जो भी खून जो है बॉडी में चल रहा है, ये गर्म हो गया तो क्या करता है, बॉडी चाहती है यार थोड़ा ठंडा हो जाए, आराम कर ले, तो इसलिए क्या होता है, नींद आती है, तो जब करते हुए अक्सर भक्तों को नींद आती है, वेरी कॉमन, क्योंकि मेडिटेशन करने बैठते हैं, कई ऐसे योगी हैं, ऐसे कहीं ध्यान लगाते हैं, इनफैक्ट कुछ तो योगा सेंटर ऐसे ही हैं, या ध्यान लगाइए, ऐसे ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए, थोड़ा थोड़ा सा नींद आ जाती है, वो एक घंटे बाद उठता है, वो कैसे लग रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या देखा कितना प्रभावशाली है योगा हमारा, कितना प्रभावशाली, कितना सो रिफ्रेश्ड। तो आप इसको डेली करिए, आप अकेले में ना सारे कमरे की बत्तियां बुझा दूं, सामने ना वो अगरबत्ती जला के ना, सॉरी मोमबत्ती जला के ना, उसके ऊपर जो है से ध्यान लगाओ, तो आप एक घंटे बाद आपको लगेगा कि आप जो है एकदम तरोताजा हो गए। वो तरोताजा कोई योगा से नहीं हुआ है, वो एक बहुत फर्स्ट क्लास नींद के कारण हुआ है। तो इस तरह के डूज एंड डोंट्स आवश्यक होते हैं वास्तव में। तो खाने का जैसे कि हो गया, है ना, तो यहां जैसे बताया जा रहा है कि मानसिक कार्यकलापों को वश में करता है, मानसिक कार्यकलापों को, यानी कि यानी कि सूक्ष्म स्तर पे, यानी कि सूक्ष्म स्तर। आप सूक्ष्म का मतलब जानते हैं क्या होता है? हाँ, यानी कि इच्छाएं, संस्कार, विचार, हाँ, पुरानी यादें, इनको कहते हैं सूक्ष्म। तो मन के जो कार्यकलाप है उनको वश में करता है वो। लेकिन कैसे कर पाता है? क्योंकि बाहर के क्या जो कार्य कर रहा है वो, यानी कि जैसे कि चैंटिंग करता है वो, हियरिंग करता है वो, हाँ, या कुछ प्रसाद पाता है वो, तो ये एक एक्टिविटी है जो कि बाहर कर रहा है वो। इसका फर्क उसके चित्त पे पड़ता है। वैसे ये मन और जो चित्त है ना, ये वैसे ऑलमोस्ट नॉन डिफ्रेंशिएटेड है। चित्त जो है वास्तव में किसको कहते हैं हम? जो हमारी कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस है, यानी कि दूषित हुई चेतना को क्या कहते हैं? चित्त। चेतना कहते हैं जो शुद्ध चेतना है, आत्मा की चेतना है ना, तो चित्त है यानी चेतना का वो हिस्सा जो कि दूषित है। तो वास्तव में वो दूषित एरिया में और कोई नहीं, मन रहता है वहां पर उस दूषित चेतना में। इसलिए जो है मन में उपटांग विचार होते हैं। इसलिए अगर मन की शुद्धि होती है तो हम ये कह सकते हैं कि चित्त की शुद्धि हो गई। और यहां पर बोले अध्यात्म स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है जब वह योग में सुस्थिर हो जाता है। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति भक्ति में ना स्टेबल हो गया है। ऐसे आपने पठार देखा है? पठार किसने देखा? पठार कभी हाथ खड़ा करें, पठार नहीं देखा कभी किसी ने? जैसे मैदान होते हैं, पहाड़ होते हैं, इस तरह से पठार भी एक तरह का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है। तो ये ना पठार ऐसा होता है, ऐसा, ऐसा और फिर ऐसा, ठीक है। तो वास्तव में इसके ये जो ये भक्त के जो है, जो भक्ति में आगे बढ़ने का जो उसका संघर्ष है, ये बिल्कुल ये पठार का है जो रास्ता है, यही है वास्तव में। पठार में सबसे मुश्किल हिस्सा कौन सा? अगर आपको नीचे से ऊपर चढ़ना है तो ये ऊपर का ये वाला हिस्सा ना, यहां से ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल। यहां पर आगे स्टेबल हो गया वो, ये तो बहुत ही मक्खन है एकदम, है बहुत बढ़िया है तो ये वाला रास्ता तो। लेकिन यहां बहुत संघर्ष है, हाँ, चढ़ना, फिर नीचे गिरना, पांव फिसलना, हाँ, धस गए, कुछ हो गया, फिर नीचे गिर गए, हाँ, तो यहाँ यहाँ बहुत गिरना पटकना चलता रहता है। ऊपर चलता है फिर नीचे आता, ऊपर चलता है नीचे आता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यहाँ चल रहा है, हाँ। तो ये क्या है? अस्थिरता है वास्तव में, है ना, अस्थिरता है। जैसे किसी दिन जो है आपको मंदिर आने का मन करता है, सेवा करने का मन करता है, और कभी कहता है छोड़ो ना, आज रिलैक्स करते हैं, संडे है, छुट्टी, हाँ। तो कभी कभी तो इस तरह से क्या होता है जो मन के जो द्वंद है व्यक्ति उसमें जो है, जो योगी है, जो भक्त है उसमें वो जूझता है। लेकिन जो स्थिर हो गया, यानी कि वो इस लेवल पे आ गया पठार में, तो क्या वो स्थिर हो गया? यानी कि वो ऐसे व्यक्ति के अंदर भौतिक इच्छाएं अगर होती भी हैं, अगर तो वो उनसे डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे कि यहां पर श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं, साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्य में ये विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशीलन अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं करती। यानी भौतिक इच्छा है लेकिन उसे विचलित नहीं करती, दैट्स अ पॉइंट। अगर वो गली से गुजरता है, हाँ, और टन 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 सुनता है, हाँ, टिक्की ले लो टिक्की, हाँ, और उसकी जो है उसकी उसकी फ्यूम्स भी निकल रही हैं और उसकी आवाज भी कान में पड़ रही है, वो देखता है, वो कहता है लेकिन ये कृष्ण को अर्पित तो थोड़ी है, हाउ कैन आई टेक इट। तो वो जो है ये भौतिक इच्छा है, जब उसने देखा वो आकर्षित हुआ, कहते नहीं नहीं ये तो जब जो ये जो कृष्ण का नहीं उसे मैं कैसे लेता हूं, मैं तो कृष्ण प्रसाद लेता हूं या लेती हूं, नहीं। तो क्या वो भौतिक इच्छा होते हुए भी उसे विचलित नहीं हुआ? जैसे यहां पर मैथुन का बताया जा रहा है, यानी ये जो पर पुरुष या पर स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आकर्षण होता है, जब वो कोई सुंदर स्त्री देखता है तो देखेगा, हाँ, लेकिन फिर वो होता है नहीं, वास्तव में जो स्त्रियां हैं वो तो कृष्ण के लिए हैं। जो स्त्रियां हैं किसको शोभा देती हैं? कृष्ण को शोभा देती हैं। तो ये देखता है, अच्छा धन, अरे धन तो विष्णु के लिए है, धन किसके लिए है? विष्णु के लिए है। स्त्रियां किसके लिए हैं? कृष्ण को शोभा देती हैं। मैं बड़ा हीरो बनने की कोशिश की मैंने कई जन्मों से, बहुत बैंड बजी मेरी, एक कृष्ण जो है ये वास्तव में जितनी स्त्रियां हैं सब कृष्ण की हैं। अगर मेरी पत्नी भी है तो मुझे जो है इसको फैसिलिटेट करना है ताकि ये जान सके कि मैं संसारिक व्यक्ति हूं, मैं एक संसारिक पति हूं, असली पति जो है वो आत्मा के कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। चाहे आत्मा पुरुष के शरीर में हो चाहे स्त्री के शरीर में हो, वास्तव में सारी आत्माओं के पति कौन है? कृष्ण ही है। तो इसलिए अगर वो स्त्री को भी देखता है या स्त्री अगर पुरुष को देखती है तो ओ ही बिलोंग्स टू कृष्ण, ये तो कृष्ण के है, मेरे थोड़ी है। या फिर यहाँ पे अगर पुरुष अगर स्त्री को देखता होगा तो शी इज ब्यूटिफुल बट शी बिलोंग्स टू कृष्ण। जैसे कि एक मैं पता नहीं मैंने यहाँ शेयर किया नहीं किया, एक बार श्रील प्रभुपाद एक शिष्य था तो एयरपोर्ट में था। अब एयरपोर्ट में एयर होस्टेस भी आती जाती हैं, गुड लुकिंग होती हैं, सुंदर होती हैं, तो वो जो है देख रहा था एयर होस्टेस को, बड़ी सुंदर है। तो प्रभुपाद जी ने उसको देख लिया कि ये एयर होस्टेस को देख रहा है। तो इसने जब पलट के देखा प्रभुपाद इसको देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने इसको देख लिया कि एयर होस्टेस को देख रहा था ये, तो इसके तो हाथ पांव थरथरा गए कि भाई प्रभुपाद ने देख लिया कि मैं एयर होस्टेस को देख रहा था। प्रभुपाद जी उसके पास आए, प्रभुपाद जी ने कहा बहुत खूबसूरत है ना वो, तो और शर्मिंदा हो गया शिष्य। क्या सोचो, प्रभुपाद जी ने कहा अगर सृष्टि इतनी सुंदर है तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो जैसे ही प्रभुपाद ने बोला उसके हृदय की जो कामुकता थी उसको एकदम चकनाचूर कर दिया प्रभुपाद ने। तो इसीलिए जो जो भक्त होता है वास्तव में इस तरह से रेगुलेट करता है वो। तो मैथुन जहां बताया था, तो वास्तव में जो अट्रैक्शन फॉर सेक्स लाइफ ये बहुत बड़ा हर्डल है। इसलिए जो है इसको इसको प्रभुपाद बोला करते थे सेक्स इज फॉर प्रोक्रिएशन, इट इज नॉट फॉर रेक्रिएशन। सेक्स इज फॉर प्रोक्रिएशन, इट इज नॉट फॉर रेक्रिएशन। ऑफकोर्स ये एक स्टैंडर्ड है जो कि श्रील प्रभुपाद ने दिया है, जो कि हम सबको मीट करने का प्रयास करना चाहिए। और वास्तव में जो कुछ स्थित हो जाता है, जिसकी इंद्रियां जो है वास्तव में कृष्ण भावना से युक्त है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। ऑफकोर्स इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का सपोर्ट चाहिए एक दूसरे को। तो सेक्स लाइफ जो है वास्तव में इसके प्रति आकर्षण जो है, प्रभुपाद बोलते हैं सेक्स लाइफ एंड सेल्फ रियलाइजेशन गो इल टूगेदर, दोनों जो है साथ साथ एक साथ नहीं चलते। ये सोचे कि जो है कोई एकदम चरित्र में एकदम खो जाए, अपना चरित्र एकदम खो दे और भक्ति भी आके करता रहे, कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं होता कि अग्नि के ऊपर जो है पानी डालते रहो और फिर जो है उसमें फ्यूल भी डालते रहो तो जलेगी वो, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए वास्तव में ये दो नाव पे, ये वास्तव में नदी के दो किनारे हैं, तो इसलिए जो है इनको वश में करना बहुत बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जो है भली बाहर से दिखाए कि बड़ा विरक्त है, लेकिन वास्तव में वो जब तक उसका मन कृष्ण के चरणों में जो है पूरी तरह से अर्पित नहीं है, वो कभी भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। इसलिए ऐसी सो कॉल्ड जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, जिन्हें बड़े बड़े सन्यासी या महाराज जी गुरु जी हैं, जो कि कृष्ण भक्त नहीं है और वो क्लेम करते हैं कि वास्तव में उनकी इंद्रियां उनके वश में है, ये वास्तव में सबसे बड़ा झूठ है। ये असंभव है, ये मुश्किल भी नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मुश्किल, बड़ा मुश्किल होता है इंद्रियों को वश में करना बिना कृष्ण के, ये असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि इंद्रियां वास्तव में क्या है, इंद्रियां और मन दोनों के दोनों भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति है, तो उनको कौन कंट्रोल करेगा? शक्तिमान, हम शक्तिमान है कौन है, हम शक्ति है कि शक्तिमान है? शक्ति। और जो प्रभु जी थे वो तो शक्तिमान होंगे नहीं, माता तो कहेंगे प्रभु जी हम तो शक्ति हैं, प्रभु जी हम तो देखो साड़ी पहनती हैं, हम तो शक्ति हैं। और प्रभु जी शक्तिमान, पर वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पे क्योंकि हम आत्मा है, भगवान की तरह शक्ति है, हम लोग तटस्थ शक्ति हैं। सो दैट्स व्हाई जो है शक्ति को कौन संभाल सकता है, शक्तिमान ही संभाल सकता है। तो हमारी इंद्रियां भी जो है भगवान की ही एक शक्ति है, बहुत एक शक्ति। तो जब तक इसे कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे इसको वश में नहीं किया जा सकता। एक बार वेदव्यास जी और जैमिनी ऋषि के बीच में वार्तालाप चल रही थी। जैमिनी ऋषि ने कहा कि देखिए जब हमको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो हम गलत काम क्यों करेंगे, है ना। लेकिन वेदव्यास जी कहते नहीं नहीं नहीं, देखो जब तक जो है हम, जब तक हमको साक्षात्कार ना हो जाए कि वास्तव में कि परम भगवान कौन है और हमारा उनसे एक प्रेम में संबंध है, तब तक हम जो है इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, हम गलत कार्य करेंगे। जैमिनी ऋषि कहते कैसे संभव है, जब मेरे को पता है सही क्या है गलत क्या है, मैं गलत कार्य क्यों करूंगा। सिंपल, जैसे कि मॉरल एजुकेशन दी जाती है ना, कहते देखिए जैसे हम ना कहीं बार जाते हैं दूसरी जगह प्रचार करने के लिए, या स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बिजनेस हाउसेस में, तो कहते देखिए आप ना मॉरल एजुकेशन दीजिए यहाँ पर कि हमको सिंसियर बनना है, हमको जो है ईमानदार बनना चाहिए, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो ये सब बताइए ना आप। देखिए आप ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी बताते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं हमें, लेकिन वास्तव में ये जो जैमिनी ऋषि कथा है ये बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है। तो वेदव्यास जी ने क्या किया, वेदव्यास जी ने उन्हें समझाया, लेकिन जो है दोनों में कोई कंक्लूजन निकला नहीं। तो क्या हुआ, कुछ महीने बाद जो है वेदव्यास जी को किसी दूसरी जगह जाना पड़ा। तो वो जा रहे हैं तो उन्होंने जय मनीष से कहा, देखो पीछे से अपना ध्यान रखना, हाँ आप अकेले हो पूरे आश्रम में, तो अपना ध्यान रखना, अपने खाने पीने का ध्यान रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। मैं जा रहा हूँ, मैं 3 महीने में लौट के आऊंगा। ओके ठीक है। तो जो है अब जय मनीष ऋषि थे, वेदव्यास जी तो चले गए। अब जय मनीष ऋषि को सब कुछ खुद ही करना पड़ता था, ऑफकोर्स लकड़ी लेके आना, जंगल से कुकिंग करना, वो ही करते थे। फिर वो तो कुछ समय बीत गया, तो क्या वो एक दिन जय मनीष ऋषि शाम को लकड़ी लेने के लिए गए, लकड़ी लेने के लिए जा रहे तो ना अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई तो वो जो है एक पेड़ के नीचे आ गए। पेड़ के नीचे आ गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो है एक एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी हुई है और वो एक्चुअली भीग रही है। भीग रही, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो आप भीग रहे हो, आप मेरे आश्रम चलो। कहते नहीं 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 मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ आपके साथ। कहते नहीं नहीं चिंता मत करो, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं होगा। तो आप चल सकते हो। तो वहां लेके गए अपने आश्रम में और कहा आप इस कुटिया में ठहरिए, इसको आप अंदर से बंद कर लीजिए, मैं आपसे कहूं बिना खोलने के लिए तो ही मत खोलना। तो स्त्री ने कहा ठीक है आप कह रहे हैं, बड़ा धन्यवाद। तो उन्होंने जो है कपड़े भी दिए और सब करके जो उन्होंने कहा कि आप अंदर से दरवाजा बंद कर लीजिए और मैं खोलूं तो मैं बोलूं तो भी मत खोलना। कहा हाँ जी ठीक है, ऐसा ही हुआ। जय ऋषि अपने जो है अपने अपनी कुटिया में चले गए, लेकिन वास्तव में जो जो रूप का दर्शन किया उन्होंने स्त्री का, जो भीगी हुई थी वो, हाँ उसके लंबे बाल, हाँ तो इसलिए जो उसका चिंतन बार बार हो रहा था, वो पढ़ना चाहते कुछ करना चाहते बार बार उसका चिंतन हो रहा। तो वास्तव में जो है यहाँ पर विषय जो वासनाएं थी इतनी तीव्र हो गई कि वास्तव में उन्होंने जो है अपनी कुटिया से बाहर आए और दरवाजा खटखटाया उसका, कहते खोलो दरवाजा खोलो मुझे तुमसे मिलना है। कहते क्यों क्यों क्या क्यों मिलना है आपको मेरे से। कहते नहीं मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहते हैं। बस मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे, दरवाजा खोलो। तो सुंदर स्त्री ने कहा लेकिन मैं नहीं खोल सकती, आपने खुद ने कहा था कि अगर मैं बोलूं तो भी मत खोलना। अच्छा देखो मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैंने ही तुम्हें कहा था ना बंद करने के लिए, अब मैं ही तुम्हें कह रहा हूं खोलो। कहते नहीं मैं नहीं खोलूंगी। जय मनीष ऋषि जो है कुटिया के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने ऊपर छप्पर हटाया और अंदर कूद गए। जब अंदर कूदे तो उसने चुटनी खोली और स्त्री भागी बहुत तेज और उसके पीछे जय मनीष ऋषि भाग रहे और स्त्री और तेज भागी, लेकिन जय मनीष ऋषि ने फाइनली उसको पकड़ लिया और पकड़े जैसे ही अपनी ओर खींचा वो स्त्री वेदव्यास जी में बदल गई। वेदव्यास जी कहते हैं क्यों भैया, आपको तो बताया सही क्या है गलत क्या है, हाँ आपको क्या हो गया। तो जय मनीष ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हमको ये पता हो कि सही क्या है गलत क्या है लेकिन फिर भी हमारा चित्त क्योंकि शुद्ध नहीं है तो भी हम गलत काम करेंगे। इसीलिए वास्तव में यहां मैथुन की बात की हो रही है, सेक्स लाइफ की, क्योंकि ईटिंग जो आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो मैथुन है वास्तव में सबसे मुश्किल होता है इसको नियंत्रित करना। अगर कोई किसी व्यक्ति को भूख लगी आहार ठीक है लेकिन इसके ऊपर क्या है निद्रा, आपको बहुत नींद आई हो, आपको बोला जा रहा है कुछ खा लो, कहते यार इतनी नींद आ रही थोड़ा लेट जाना मेरे को, है ना, यानी कि निद्रा की टेम्पटेशन खाने से ज्यादा होती है। आहार निद्रा उसके बाद ऊपर क्या है भय। यदि आप भयभीत हैं तो आपको यही बोला जाए कि भैया सो जाओ या कुछ खा लो, नहीं है ना, क्योंकि भय जो है ज्यादा ओवरवेलमिंग है ना। तो आहार से ज्यादा ओवरवेलमिंग क्या है निद्रा, निद्रा से ज्यादा ओवरवेलमिंग क्या है भय, लेकिन भय से भी ज्यादा ओवरवेलमिंग है मैथुन यानी कि अट्रैक्शन फॉर सेक्स लाइफ। तो अगर भयभीत सिचुएशन भी है तो वो व्यक्ति सोचेगा ओके थोड़ा सा मैं करके मैं चलता हूं, क्योंकि वहां से वो जो है सबसे ज्यादा ओवरवेलमिंग है। इसीलिए जितने ऋषि मुनि हैं उनको अगर कभी इंद्र कोई अगर पतन कराता है तो गोलगप्पे खिला के नहीं कराता उसका पतन, किसी अप्सरा को भेज के, क्योंकि वास्तव में जो अट्रैक्शन फॉर सेक्स लाइफ है ये योगी के लिए बहुत कठिन होता है इसको जीतना। लेकिन यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो तो उसके लिए बहुत आसान होता है इसको जीतना। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य कहां से आए, आप देखिए पाश्चात्य देश से, पाश्चात्य देश यानी कि वहां पर वहां किस तरह का कल्चर है, एकदम व्यभिचारी कल्चर, लेकिन कृष्ण भावना इतनी तीव्र है कि वास्तव में उन्हीं को जो है वो ही जो अमरीकी जो शिष्य थे श्रील प्रभुपाद जी के वो आगे जाके बड़े बड़े गुरु बने, जिन्होंने बड़े बड़े मंदिर खोले हैं, हाँ पूरे विश्व भर में प्रचार किया। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावना है ही इतनी ज्यादा प्रभावशाली। तो अट्रैक्शन फॉर सेक्स लाइफ जो है ये धीरे धीरे कॉन्कर होती है। इसको जो है आप आर्टिफिशियली नहीं जीत सकते, इसको आर्टिफिशियली नहीं जीता सकता, इसको रिप्रेशन करके जीता नहीं जाता। ओ नहीं, मुझे नहीं 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 करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना, नहीं गलत है, गलत है, गलत है। वास्तव में जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक जो है जीता नहीं जा सकता इसको। और चित्त शुद्ध होता है ध्यान पूर्वक भगवान के नाम को लेकर। क्योंकि अगर आप गंगा, ये जितनी भी नदियां हैं, हाँ पवित्र नदियां, उनमें स्नान कराएं, परिक्रमा कराएं, हाँ, तो उससे होता है आपके पाप तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू कमिट सिन, एक भावना है कि ना मैं पाप करूं, तो पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसका नाश सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम से होता है। तो भगवान का नाम जब तक हम ध्यान पूर्वक नहीं लेंगे तब तक जो है चित्त शुद्ध होने वाला ही नहीं है। एंड प्रेफरेबली वो नाम होना चाहिए भक्तों के संग में। भक्तों के संग में किया गया नाम जो हम चैंटिंग करते हैं, हरि नाम लेते हैं, कीर्तन में नाचते हैं, उससे जो शुद्धि मिलती है तो नेचुरली वन बिकम्स डिटैच्ड, नेचुरली। तो इस तरीके होता है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड विच वॉज गिवन बाय श्रील प्रभुपाद, दैट सेक्स लाइफ इज फॉर प्रोक्रिएशन, इट इज नॉट फॉर रिक्रिएशन। ये स्टैंडर्ड जो है धीरे धीरे जो है जो भक्त होता है इस पे आ जाता है। इन द बिगिनिंग इट विल बी डिफिकल्ट, ऐसे जो नए नए आए हैं अभी कृष्ण भावना कहेंगे प्रभु जी ये तो बड़ा, ये तो बहुत कठिन है ये तो, हाँ ऑफ कोर्स ये बिगिनिंग में कठिन रहता है, बट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा ये ग्रेजुअली जो है रेगुलेट हो जाता है। और ऐसी हाउस होल्ड लाइफ क्या होती है, बड़ी पीसफुल होती है, बहुत शांति होती है ऐसे गृहस्थ जीवन में जो कि एक दूसरे के शोषण के ऊपर आधारित नहीं है। तो यहां पर जो है इसलिए ये मैथुन जो है बता रहे, मैथुन जो है बहुत प्रमुख है, लेकिन इसको जीता जाता है कृष्ण भावना से। कोई ऐसी चीज जो बहुत शक्तिशाली हो उसको जीता जाता है जो कि उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो। तो कृष्ण भावना जो है यहाँ विशेष रूप से भगवान के भक्तों के संग में किया गया हरि नाम, तो ये जो है ये इतना ज्यादा प्रभावशाली है, बहुत बहुत ज्यादा प्रभावशाली। यमुनाचार्य जी कहते हैं जब से मैंने भगवान श्री कृष्ण के, भगवान के दिव्य रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनके नाम का स्मरण करना शुरू किया है, हाँ, तो ऐसा करने के कारण जो है वास्तव में मुझे इतना आनंद मिलता है कि यदि कभी सेक्स लाइफ का विचार भी मेरे मन में आता है तो मैं उस विचार के ऊपर थूक देता हूं। बहुत बड़ी बात है, कौन थूक सकता है उस विचार के ऊपर, बड़े बड़े गिर जाते हैं। लेकिन यमुनाचार्य जी ये कह रहे हैं क्यों, क्योंकि वास्तव में ऐसे व्यक्ति को हायर टेस्ट मिल रहा है, he's getting the higher taste। तो यहां पर जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है श्री प्रभुपाद जी ने अम्बरीश महाराज का, कि किस तरह से उनकी सारी इंद्रियां, उनका मन, उनकी चेतना, उनकी इच्छाएं सब कुछ है भगवान की सेवा में लगी हुई है। जो निर्विशेषवादी, निराकारवादी होते हैं वो अक्सर जो है बिना भगवान की शरण में जाए इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं। होता क्या है, संघर्ष करते हैं वो अपने आप से, हाँ, कभी अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। वो थोड़ा सा भले रोक ले, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी अपने इंद्रियों को परमानेंटली नहीं जीत सकता, नेवर एवर। तो जो भगवान के भक्त होते हैं दे आर लाइक शार्क होती है ना, शार्क समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर शार्क होती है, उसको एक तो ये परवाह नहीं होती कि जो नदियां जो हैं उसके अंदर समुद्र में मिल रही हैं, तो शार्क को चिंता होती है अरे देखो नदियां मिल रही हैं हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, नहीं। इसी तरह से वास्तव में जो भौतिक इच्छाओं की नदी अगर कभी अगर आती भी है भक्त के पास तो वास्तव में ऐसे ही वो अनडिस्टर्ब रहता है। श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल दिया करते हैं उस सांप का जिसके की दांत तोड़ दिए गए हैं। अब जिस सांप के दांत नहीं है उसमें जहर नहीं है, उसे डरने की आवश्यकता है, वो तो खिलौना है वो तो। तो ऐसी इंद्रियां जो कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी है, तो वही इंद्रियां जो कि सांप के समान हमको डसती हैं, वो इंद्रियां जो कि हमारा पतन कराती हैं, वो इंद्रियां जो कि हमारे चरित्र को गिराती हैं, वो ही इंद्रियां हार्मलेस हो जाती हैं। जैसे सांप होता है उसके दांत तोड़ दिए गए, उसका जहर निकाल दिया, वो क्या है, कुछ भी नहीं है ना। तो इस तरह से जब तक इंद्रियां जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगती तब तक जो है ये शुद्ध नहीं हो सकती, तब तक ये शुद्ध नहीं हो सकती। तो इसलिए जितना हरे कृष्ण, तो इस तरह से जो भक्त होता है वो ज्यादा शांति में रहता है। यहां तक कि जो भक्त का संघर्ष है उसमें भी एक मिठास है। श्री प्रभुपाद ने कहा एक एक भक्त को, आई कैन लिबरेट यू राइट हियर राइट नाउ बट आई विल नॉट डू दैट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस द स्वीट स्ट्रगल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। मैं चाहूं तो तुमको अभी यहीं के यहीं मुक्त कर सकता हूं, प्रभुपाद जी ने कहा। और ऐसा नहीं प्रभुपाद कोई मतलब हवा में छोड़ रहे हैं, ऐसा कर नहीं सकते। ही कैन डू दैट, वो कर सकते हैं। भगवान के नित्य धाम से आए हुए नित्य पार्षद है, ही कैन डू दैट। किसी को भी मुक्त करना चाहे वो कर सकते हैं, जस्ट बाय सेइंग ओके लिबरेटेड हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मैं चाहता हूं कि कृष्ण भावना को प्राप्त करने का जो संघर्ष है तुम इससे गुजरो, क्योंकि ये जो है ये संघर्ष ही बहुत आनंददायक है। क्योंकि संघर्ष किसके लिए? कृष्ण के लिए। ये संघर्ष बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कोई बॉक्सिंग मैच है, लेकिन आपको जो है आपके मन के साथ एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर छोड़ दिया गया। अब वहां पर जो है घमासान युद्ध होने वाला है, ठीक है। नाउ कृष्णा इज सिटिंग इन ऑडियंस, नाउ कृष्णा इज वॉचिंग द मैच। हाँ चलो देखते हैं, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि आप जीते। कृष्ण क्या चाहते हैं? आप जीते। अब ये बॉक्सिंग रिंग में जो है ये मैच चल रहा है, बहुत घमासान मैच है, तो ये संघर्ष आप किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए। तो इस संघर्ष में भी इसलिए मिठास है क्योंकि हम ये जो संघर्ष करते हैं वो भी हम कृष्ण के लिए करते हैं वास्तव में। अदरवाइज देखिए श्रील प्रभुपाद को वृंदावन छोड़ के अमेरिका जाने की आवश्यकता थी। ही कुड जस्ट स्टैंड। अफकोर्स उनका स्ट्रगल अलग है, उनका स्ट्रगल ये नहीं कि मन को नियंत्रित करना है, उनका स्ट्रगल है कि कृष्ण भावना को कैसे फैलाना है। हाँ अफकोर्स वो भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास शक्ति है, भगवान ने दी है उन्हें। लेकिन हमारे साथ संघर्ष क्या है? हमारे मन के साथ, हमारी इंद्रियों के साथ, हमारी इच्छाओं के साथ, हमारी बुरी आदतों के साथ, हमारे बुरे संस्कारों के साथ हम जो संघर्ष करते हैं कि नहीं मुझे मुझे कृष्ण के लिए शुद्ध होना है, मुझे कृष्ण के लिए शुद्ध होना है, मुझे अपना हृदय शुद्ध करना है, मुझे अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना है कृष्ण के लिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो शिष्य हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है श्री कि गुरुदेव मैं जो है मैं ठीक से जप नहीं कर पाता क्योंकि मेरे बहुत सारे अनर्थ हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने रिप्लाई बैक किया उसे, कहा हाँ जितनी जल्दी हो सके इन अनर्थों से, हमारी ये जो जो काम क्रोध लोभ मोह मदमत्सर्य है इसे छुटकारा पाओ ताकि हम कृष्ण की जो है शुद्ध भक्ति कर सके। ये रोकती है हमें। लेकिन कोई सोच सकता है प्रभु जी इतना संघर्ष क्यों, कृष्ण संघर्ष को आसान क्यों नहीं कर देते कि वो जल्दी आप जैसे आए चैंडी थोड़ी शुरू की, एक आध महीना थोड़ा स्ट्रगल हुआ, एक महीने बाद मुक्ति पसला है ना प्रभु जी, आप पसता हो गए, एक महीने बाद एकदम परफेक्ट होता है सब कुछ। क्यों? इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि एक तो भगवान चाहते हैं कि हम ये जो कृष्ण भावना है हाँ, इसके इसका ऊंचा जो 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 स्थान है उसको जाने। जो चीज बहुत संघर्ष से मिलती है ना हम उसकी वैल्यू करते हैं। जो चीज ऐसे मिल जाती है उसको कौन मानता है? कोई नहीं मानता उसे। कृष्ण कॉन्शियसनेस आ कुछ नहीं, एक महीने में हो गया क्रैश कोर्स, वो क्रैश हो जाता है, क्रैश कोर्स नहीं होता है। तो भक्ति अपने आप में जो है यही शॉर्टकट है। भक्ति ही शॉर्टकट है। जो भक्ति में भी शॉर्टकट देखता है उसके साथ क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, पक। तो दैट्स द भक्ति अपने आप में ही शॉर्टकट है। दिस इज द फास्टेस्ट वे। क्योंकि बाकी योगों में जो है धीरे धीरे शुद्ध होता है, ओके परमात्मा रियलाइजेशन करता है, क्योंकि जैसे कि कोई ध्यान योगी है, ध्यान योगी सबसे पहले हृदय में ना परमात्मा को देखता है। जब तो परमात्मा को देखता है पूछता है आप कौन हो, तो भगवान बताते हैं कि मैं परमात्मा हूं। हाँ, तो परमात्मा के दर्शन होते हैं, धीरे धीरे जानता है अच्छा परमात्मा परमात्मा किससे आए? कृष्ण से आए, कृष्ण परम भगवान है। बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन कृष्ण भावना क्या है? पहले दिन व्यक्ति आता है, हमारे 7 डे सेशन होता है जैसे कि, हाँ 7 डे सेशन में जो है पता लग जाता है भाई परम भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण। अब उसको इस साक्षात्कार को और परिपक्व बनाना है। ही हैज टू मैच्योर दिस रियलाइजेशन दैट यस कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ये परम भगवान है, मेरे नाथ है, मेरे सब कुछ है, उन्हीं के लिए जीना है मेरे को। हाँ ये कन्विक्शन जो है धीरे धीरे आती है। हाँ, और मैं उनके लिए कुछ भी अनुकूल है उसे अपना सकता हूं, जो प्रतिकूल है उसे त्याग सकता हूं। जैसे टेलीविजन, टेलीविजन क्या है? प्रतिकूल है, लेकिन शुरू शुरू में कहा जाए जी देखिए आप टीवी साहब क्या होता है, अभी अब तो प्लाज्मा खरीदा हमने, प्लाज्मा टीवी कौन सा? सैमसंग। अच्छा व्हाट अबाउट साधु संघ? साधु संघ तो देखिए वो तो हम कर लेते हैं, कभी कभी आए थे हम लोग, लेकिन सबसे रोज जो हम संघ करते हैं वो है हमारा सैमसंग, हमारा प्यारा सैमसंग। और फिर घर में जो है उसको सबसे इंपॉर्टेंट जगह देते हैं, जहां पर ऐसी भगवान के विग्रह होने चाहिए वहां पर वो जगह दी जाती है, ये बेस्ट है। यहाँ पर हम सोफे बैठ के जो है यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग खाते पीते भी देख सकते हैं। हाँ, भगवान के भक्त सोचते हैं ऐसी जगह भगवान का मंदिर होना चाहिए जहां पर हम भगवान को हर समय देख सकें, किचन से देख सकें, बेडरूम से देख सकें, डाइनिंग हॉल से देख सकें। तो भक्त ये देखते हैं कि भगवान का विग्रह वहां होना चाहिए, भगवान का ऑल्टर वहां होना चाहिए जहां से हम हमेशा भगवान के दर्शन कर सकें। लेकिन भौतिक चेतना क्या होती है, टेलीविजन वहां लगाया जाए जहां पर कि हम जैसे भी तैसे भी टीवी टेलीविजन देख सकें, चाहे किचन में हो तो भी देख सकें, चाहे हम लेटे हो तो भी देख सकें, पॉपकॉर्न खा रहे हो तो भी देख सकें, बस हम हर समय देख सकें। तो वास्तव में देखना जो है ये जो है आत्मा के अंदर स्वाभाविक है, लेकिन किसको देखना है ये जो है वास्तव में चेतना की शुद्धि पर निर्भर करता है। जब चेतना शुद्ध होती जाती है तब वास्तव में उसकी चॉइसेस भी शुद्ध होती जाती है। तो इसलिए जो है वास्तव में चेतना को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, और चेतना जो है शुद्ध होती है जब हम कृष्ण भक्ति में तीव्रता पूर्वक लगते हैं, बड़ी गंभीरता के साथ लगते हैं। तो विशेष रूप से जो गृहस्थ भक्त हैं, जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि कृष्ण भावना की जो क्रियाएं हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक करें, बहुत हृदय के साथ करें, क्योंकि शुद्ध क्या करना है हमें, हृदय करना है, तो हृदय लगाना पड़ेगा ना, हृदय लगाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई चैंटिंग इज नॉट टंग डीप, इट इज हार्ट डीप, इट इज हार्ट डीप। तो चैंटिंग जो है सिर्फ मुंह से नहीं होनी चाहिए, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हो गया बड़ी चैंटिंग, हो गया बड़ी खत्म, हो गया 16 वाला हो गया खत्म, हृदय से होनी चाहिए चैंटिंग। तो हृदय से जब भगवान का नाम लेते तो हृदय शुद्ध होता है। आप हरि नाम को जहां लगाएंगे वही चीज शुद्ध होगी ना, अगर सिर्फ इंद्रियों के लेवल पे लगाएंगे इंद्रिया शुद्ध होंगी, मन के स्तर पे लगाएंगे तो मन शुद्ध होगा, और अगर चेतना में लगाएंगे तो चेतना शुद्ध होगी। ठीक है, तो आज इस तरह से जो है यहां पर बात हो रही है कि किस तरह से योगी जो होते हैं योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेते हैं और आध्यात्म में स्थित हो जाता है। दिस पर्सन बिकम वेरी स्टडी इन भक्ति, भक्ति में बहुत स्थिर हो जाता है ऐसा व्यक्ति। चैंटिंग 16 राउंड उसके लिए बहुत आसान होते हैं, सुबह उठना बड़ा उसके लिए स्वाभाविक होता है, उसको अलार्म नहीं लगाना पड़ता सुबह उठने के लिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये कहता है उसको पता है सुबह मुझे जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए हरि नाम लेना, ऐसा व्यक्ति क्या स्थिर है वास्तव में स्थिर हो जाता है वो, और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो जो है ये वास्तव में सारा खेल क्या है, मन का है, मन की शुद्धि का है। तो हमारा वास्तव में संघर्ष बाहर नहीं है, हमारा संघर्ष क्या है, अंदर है। जैसे कि एक बार मेनका गांधी हमारे एस्कॉन में एक महाराज से मिली, कहते स्वामी जी व्हाट आर यू डूइंग फॉर द इकोलॉजी, आप पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, वो बताइए हरे कृष्णा वाले वे पेड़ पौधे लगाते नहीं है लोग, कहते आप पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं आप, व्हाट आर यू डूइंग फॉर इकोलॉजी। महाराज ने कहा एक्चुअली देयर इज इम्बैलेंस इन द इकोलॉजी आउटसाइड बिकॉज the ecology inside is imbalanced, we work on inner ecology. तो माना ने कहा कि हम बाहर के पर्यावरण दूषित इसलिए क्योंकि अंदर का हमारा पर्यावरण बहुत खराब हो रखा है, तो हम अंदर के पर्यावरण के ऊपर कार्य करते हैं। जैसे एक भक्त ने बताया, एक बार किसी ने पूछा आप लोग ये समाज सेवा करते हैं क्या आप लोग, भक्त ने कहा हाँ जी करते हैं समाज सेवा करते हैं, तो आपकी समाज सेवा का नाम क्या है, भक्त ने कहा कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग, वी वर्क ऑन कॉन्शियसनेस चेतना, क्योंकि यहां गड़बड़ है इसीलिए बाहर सारा गड़बड़ है। अगर बहुत सारे ऑल पेन टेढ़े मेढ़े पड़े हों तो उनको एक लाइन में करने का एक तरीका है, भाई सबको अलग अलग करके एक लाइन में करो, ये करो वो करो, हैं हजारों पड़े हैं लाखों पड़े, कर सकते हैं आप इनको अलाइन, बहुत मुश्किल है। एक बड़ा सिंपल तरीका है, यहां मैग्नेट रख दो तो क्या होगा, जितने भी टेढ़े मेढ़े ऑल पेन रखे सब एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, राइट right. इसलिए कृष्ण भावना का जब मैग्नेट, जो कृष्ण भक्ति का जो मैग्नेट आप रख देते हैं तो क्या होता है, हमारी टेढ़ी मेढ़ी इच्छाएं बुरी आदतें टेढ़ी इधर उधर हो रखी हैं अपने आप अलाइन हो जाती हैं, नहीं तो क्या है, बिना मैग्नेट के भी आप कर सकते हो, एक एक को सीधा करो सारे और पिन को, और पिन ज्यादा नहीं होता है, लोहे का पिन होता है ना, सबको सीधा करो, बड़ा मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। एक है कि बहुत सारे टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, यहाँ बहुत स्ट्रांग मैग्नेट रख दो, सारे एकदम एक लाइन में आ जाएंगे। तो वो कृष्ण भावना है वास्तव में, ये मैग्नेट। तो इंद्रियां, हमारा मन, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी इच्छाएं, हमारी आदतें, ऑल बिकम प्योर माई कृष्ण कॉन्शियसनेस। ठीक है, समय हो गया, किसी को प्रश्न है? किसी को सवाल? सगमन वश में, क्या बात है, कमाल हो गया। तो बड़े बड़े योगियों का मन वश में नहीं होता, आपका मन वश में है, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे कैसे जीतेंगे आप इंद्रियों को, कौन बताएगा? कैसे जीतेंगे आप मन को, पागल मन को? बिल्कुल। नहीं तो मन जो है वो पागल ही रहेगा वो। हाँ, ऐसे बहुत है, एक 90s में एक मूवी आई थी, दिल तो पागल है, उसमें हीरो बीच में खड़ा है, उसके आसपास दो दो स्त्रियां खड़ी हुई हैं, तो भक्त ने जब देखा उसने कहा वाकई में इसका मन पागल है, इसका दिल तो पागल है। क्योंकि इंद्रिय भोग के पीछे भाग के जो है वास्तव में सिर्फ दुख ही मिलता है। इंद्रिय भोग बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि एक टेम्पटेशन है, एक टेम्पटेशन जैसे कि वो नहीं होता, हाँ, फायर मौत, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, फायर मौत, नहीं नहीं जुगनू नहीं, फायर मौत, फायर मौत होता है ना, जिसको कि पतंगा होता है, जिसको कि ना आग की जो गर्माइश है उसे बड़ी पसंद होती है। हाँ एग्जैक्टली, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो उसको जो आग की गर्मी बड़ी अच्छी लगती है, ऐसे कहते हैं आग, इसको गले लगा लूं, इसको एक बार बस इसका हो जाऊं, चंदन सा बदन चंचल चित बन, बस। तो उसके बाद क्या होता है, फिनिश्ड। तो इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल वैसी ही है, बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। हाँ, कुछ अच्छा मजेदार खा लें, चटपटा, कुछ देख लें ऐसा तड़कीला भड़कीला, हाँ कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्या रखा है, हाँ भक्ति में क्या रखा है। पर बिल्कुल वैसी टेम्पटेशन है जैसे कि फायर मौत की, फायर के लिए होती है, जो उसे बर्बाद कर देने के लिए। तो इससे जो है वास्तव में ये बोझ है आत्मा के ऊपर इंद्रिय तृप्ति का, कि इतनी इसी खुशी के लिए उस अनंत सुख को हम त्याग देते हैं। अनंत सुख है भगवान की जो भक्ति है उसमें अनंत सुख है, इतना सुख है वास्तव में कि उस सुख को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको आध्यात्मिक शरीर की आवश्यकता पड़ती है। यू कैन नॉट एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ कृष्ण प्रेमा इन दिस बॉडी, आप इस शरीर में उस आनंद को संभाल नहीं सकते, इतना आनंद, क्या आनंद होगा वो। लेकिन उस आनंद को हम छोड़ देते हैं, लीव इट, फॉरगेट अबाउट इट, क्या एक दो जलेबी के लिए, दर्द तरीकी, बैड बार्गेन, बुरा सौदा। तो ये भौतिक शरीर और ये भौतिक संसार जो है ये बुरा सौदा हमने किया है, लेकिन इसी बुरे सौदे को जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा, इस बुरे सौदे को हम अच्छे सौदे में बदल सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पांव में, जंगल में जा रहे हो, आपके पांव में कांटा लग गया, तो कांटा कैसे निकालोगे, कांटे से। तो कांटे से कांटे को निकालना, यही है कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये शरीर क्या है वास्तव में, दुखों का सागर है, लेकिन इसी शरीर को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये शरीर ही इस शरीर से मुक्ति का कारण बनेगा। लेकिन उसके लिए क्या है, हमें बैलेंस करना पड़ता है ना, हमारी ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन, जैसे पिछले श्लोक में बात हो रही है। तो इसे जो है रेगुलेट करना बहुत बहुत आवश्यक है। ठीक है, और किसी को कोई सवाल है? यस, या अच्छा, अर्जुन जो है युद्ध लड़ रहे हैं, तो मतलब ये भौतिक कार्य कर रहे हो? हाँ, वास्तव में क्रिया खराब नहीं होती, खराब क्या होती है, चेतना। जैसे मैंने अभी ड्राइविंग का एग्जांपल दिया था आपको, है ना, भक्ति ड्राइविंग करते हैं और बाहर के लोग भी ड्राइविंग करते हैं, बाहर के लोग भी काम करते हैं, भक्ति ऑफिसों में जाके काम करते हैं, बाहरी माताएं कुकिंग कर रही हैं, और जो भक्त माता है वो भी अपने घर में कुकिंग करती है. डिफरेंस डिफरेंस किस चीज का है? कॉन्शियसनेस, चेतना. तो दुर्योधन भी युद्ध लड़ रहा था, अर्जुन भी युद्ध लड़ रहे, दोनों बोथ आर फाइटिंग. दुर्योधन गया हेल, अर्जुन गए भगवान के धाम. व्हाई? व्हाट्स द डिफरेंस? कॉन्शियसनेस. जो सर्जन होता है वो भी छुरी चलाता है, जो डाकू है वो भी छुरी चलाता है, लेकिन जो डाकू जो चोर है वो छुरी चलाता है, दूसरों क्या होता है? सजा मिलती है. और ऑपरेशन जो करता है वो करता है उसकी तारीफ होती है, इसने इस व्यक्ति की जान बचाई, लेकिन चलाई दोनों छुरी है. व्हाट्स द डिफरेंस? कॉन्शियसनेस. तो एक्टिविटी हमको नहीं बांधती, क्या बांधती हमें? कॉन्शियसनेस, कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस. जब हम अपने स्वार्थ के लिए जब कार्य करते हैं तो वो चीज हमको बांधती है, लेकिन जब भगवान और उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करते हैं तो वो चीज हमको मुक्त करती है. तो ऐसा ये जो है ये गलत है. हमें लोगों को लगता है कि स्वार्थी होकर व्यक्ति खुश रहेगा. जस्ट बी योर सेल्फ, लिव फॉर योर सेल्फ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज यू. क्यों ऐसे लोग बोलते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति संसार में अगर कोई है तो आप है. आत्मविश्वास जगाइए अपने में और जिए, और इस जीवन को पूरी तरह से जिए. ये दुनिया आपकी है, करो दुनिया मुट्ठी में. कितनों के हाथ में मुट्ठी में दुनिया आती है? बाजार से ग्लोब खरीद लो 10 रुपए का, बस वही आएगा हाथ में. तो इस भाषा में ये जो है इतना से जो जो इच्छाओं को बताया जाता है कि हाँ, स्पेशली आजकल को जो कल्चर है वो यही है कि किस तरह से जो है इंद्र तृप्ति करके आप खुश रहेंगे. हाँ, तो ये जो है ये ऐसा व्यक्ति कभी भी योगी नहीं बन सकता, और योगी क्योंकि नहीं बनेगा ऐसे कभी वो उस अनंत सुख का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि जी वास्ता बना ही भगवान की सेवा के लिए. यस, हाँ, महामंत्र को ना आपको मन को ध्यान देना, ना आपको जी पे ध्यान देना. आपको किस पे ध्यान देना? नाम पे, नाम पे ध्यान देना. मैंने आपको बताया ना, जस्ट यू हैव टू प्लेस द मैग्नेट. यहाँ ये जीव और ये सब जो है ये ऑल पिंस हैं. ऑल बिकम अलाइन व्हेन देयर इज अ होली नेम. तो भगवान का नाम जो है उस पे ध्यान देना हमें, ठीक है? तो अपने आप जो है ये अलाइन होंगे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. तो मन अगर जाएगा भी हा? तो कितने समय जाएगा? चाहे कुछ हो जाए, चाहे आप मन आपको भागे चाहे ना भागे, लेकिन हरि नाम का प्रभाव तो आपको मिलेगा मिलेगा. अगर ध्यान पूर्वक नहीं तो कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर. ये हरि नाम की महिमा है. यस यस, हरि नाम कौन है? हरि नाम इज कृष्ण हिमसेल्फ. हाँ, तो भगवान का नाम ही मन को नियंत्रित करेगा, लेकिन ये धीरे धीरे होता है, क्योंकि जितनी आप इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से मुक्त होते जाएंगे उतना आप हरिनाम के प्रति समर्पित होते जाएंगे, और जितने आप समर्पित होते जाएंगे उतने ज्यादा क्या मन अपने आप नियंत्रित होना शुरू हो जाएगा. टू वे प्रोसेस. तो चाहे कुछ हो जाए, वी शुड ऑल चैंट हरे कृष्ण विद डिवोशन. भक्तिभाव से लगे रहो, भक्तिभाव से लगे रहना है हमें. और किसी को सवाल? यस, आपने कभी गुलाब जामुन खाया? अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताएं कि गुलाब जामुन कैसा होता है तो आप क्या बताओगे? कैसा होता है गुलाब जामुन? नहीं, अगर आपको बताना कि इसका स्वाद कैसा है उसका. हाँ, मीठी तो जलेबी भी होती है, गाजर का हलवा भी होता है. क्या कैसा वाला मीठा? तो आप क्या कहोगे? ले यार गुलाब जामुन ले पुक, ये होता है गुलाब जामुन. तो आध्यात्मिक जो सुख है, जो आनंद है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. उसको अनुभव ही किया जा सकता है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन उसका वो क्या करना चाहिए, नीचे चल के आना चाहिए वापस पृथ्वी पे, ठीक है, और राधा पार्श्वनाथ के सामने बैठ के जप करना चाहिए। फिर वही अब अंतरिक्ष में जा सकता है, वही राधा पार्श्वनाथ के पास ही नहीं सकता मन, है ना, तो मन वहां तक ले गया आपको अंतरिक्ष में, आप वहां कीर्तन करके आए, आपने काफी हरिनाम फैलाया, बहुत बहुत अच्छी बात, और वहां से नीचे उतर के आइए, ठीक है, पृथ्वी पे, और पृथ्वी पे कहां चल के आएंगे, राधा पार्श्वनाथ उनके सामने बैठ के फिर जप करें, ठीक है, और ठीक है। अरे ये तो मैं बताने भूल गया, आपको हरिनाम से शुरू करना है, आप मंडे क्लास में आते रहिए और हरिनाम लेते रहिए, और दो काम करने, क्या करना है, भगवान का नाम लेना है और मंडे क्लास में आना है, ठीक है, दिस गुड, आई लाइक दिस ऑनेस्टी, आई लाइक दिस ऑनेस्टी, अदरवाइज कोई व्यक्ति जो है अपने मन में रखता है, पता नहीं सवाल पूछूं ना पूछूं, पता नहीं क्या बोलेंगे। जैसे कि एक बार एक भक्त था, उसको अमेरिका में ना नया नया जुड़ा, तो क्या है उसको पता नहीं था, तो भक्त जो है कीर्तन करते निकल रहे थे, तो कीर्तन कर रहे थे, गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल, गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं लोग, यार कहता है ये Where did Nityananda go? I don't know. कहते ये अजीब है, जो मेन सिंगर है वो गाता है Where did Nityananda go? सब बोलते हैं I don't know. भाई जब नहीं पता है फिर भी क्यों पूछ रहा है ये? बार बार बोले जा रहा है Where did Nityananda go? बोलते हैं I don't know. बार बार हो जा रहा है ये। अरे यार कमाल है, कहते लेकिन मैंने सवाल पूछने कहेंगे यार तुमको ये भी नहीं पता है, बेवकूफ है, नहीं यार सवाल पूछूंगा नहीं मैं, वो चलता रहा वो भी करता रहा वेड नित्यानंद को आई डोंट नो, पहुंच गया फाइनली, हाँ पहुंच गया, तो सब प्रसाद पा रहे थे, प्रसाद में बैठा था, साथ में जो है भक्ति बैठा, तो लेकिन अंदर मची हुई है उसको ये भी, अरे फाइनली वेड नित्यानंद को, तो भक्त ने कहा क्या मतलब, कहते कीर्तन करते रहे थे वेड नित्यानंद को आई डोंट नो, तो भक्त ने बताया ये गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल। तो कभी कभी हम जो है सवाल नहीं पूछते, ये सोचे पता नहीं क्या सोचेंगे, हाँ लेकिन फिर भी हमको सवाल पूछने चाहिए, अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य योनि मिली ही है सवाल पूछने के लिए, भले कैसा बचकाना सवाल हो या फिर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सवाल हो, हाँ पर हमें सवाल पूछने चाहिए, दिस इज वेरी गुड, तो आई लाइक दिस ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी जो है प्रशंसनीय है, ठीक है, समय हो गया है, यस श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, थाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।